الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی 261 نمبر آیت ہے جو آج ہم شروع کریں گے مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ایک ایسے دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں پیدا کرے اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے مزید اضافہ کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت گنجائش والے بہت علم والے ہیں. یہ بات بہت اہم بات کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں چیزیں خرچ کرتے ہیں وہ دراصل جس اجر کا باعث بنے گی وہ کتنا ہے. ایک نیکی کا جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں 700 روپے والا اجر ملے گا. گویا ہم نے 700 روپے خرچ کیے تھے. اس کو ایک تمثیل سے سمجھایا ہے کہ 1 روپیہ جب ہم بیج کی طرح ایک بیج ہم بوتے ہیں تو اس کا ایک پودا نکلتا ہے. اس پودے کے اوپر 7 بالیاں لگی ہوں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں تو 700 گنا ہو گیا. یہ ظاہر ہے کہ وہ ضابطہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نیکیوں کا اجر کتنا ہوگا. اس میں اب دونوں امکانات ہیں. جو بات کہی گئی ہے اتنی وہ تو واضح ہے, دو ٹوک ہے کہ 700 گنا تک جائے گا. اب 700 گنا میں مثال کے طور پر ایک آدمی منافقت کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ کرتا ہے تو کوئی اجر نہیں ملے گا. تو اس طرح کے لوگ زیر بحث نہیں ہیں. یہ وہ لوگ زیر بحث ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے, نہ ریاکاری نہ کچھ اور, بلکہ اللہ کی خاطر جو کر رہے تھے ان کا اجر 700 ہوگا. پھر اس میں یہ پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ کسی کا انعام اس سے کم بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے جس معیار پہ نیکی کرنی ہوتی ہے اس پر اگر نہیں کی, یا ہمارے حالات ایسے تھے کہ ہمارے لیے نیکی کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس موقع پر. مثال کے طور پر میرے لیے ہو سکتا ہے کہ 1 روپیہ نکالنا جیب سے مشکل ہو اور کسی کے لیے 10 روپے نکالنا مشکل ہو, لیکن 1 روپیہ اس کے لیے کوئی مشکل نہ رکھتا ہو مانی. تو اس طرح کی صورتحال میں اگر کوئی آدمی جتنے اس کو خرچ کرنے پڑ گئے اتنے کی وہ ہمت نہیں رکھتا تھا اور اس نے وہ کیے تو ظاہر ہے اس کا اجر بڑھنا چاہیے. تو اب دو امکانات ہیں, ایک یہ کہ یہ سب سے کم اجر ہو اور ایک یہ کہ یہ میکسیمم اجر ہو جو قانون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اور اس میں کمی نہ ہو, اور ایک یہ ہے کہ یہ میکسیمم ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ قانون کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی 700 گنا تک اجر پا سکتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, یہ تو ضابطے کی بات ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس سے زیادہ بھی بڑھا دیں گے, اس کو کئی گنا کر دیں گے. اب یہ جو نیکی کا اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے, یہ ظاہر ہے کہ اس کو قرآن میں دوسرے مقامات پہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے طریقے سے واپس کرے گا. تو قیامت والے دن جو کچھ بھی ہونا ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ امور متشابہات میں سے ہیں, تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نیکیاں کس طرح سے ہمیں واپس ملیں گی, اعمال نامے میں کیا لکھا ہوگا, یہ ہم تفصیل نہیں کر سکتے. لیکن اتنی بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اگر پیسہ خرچ کیا جائے تو نیکی کی جائے تو وہ کئی گنا ہو کر واپس آئے گی. تو اس لیے یہ بات ہمیں ابھارنے کے لیے ہے. اور یہ جو مضمون پیچھے چل رہا تھا چند آیتیں 20-25 آیات پہلے جہاد کے حوالے سے خرچ کرنے کا, یہ اسی مضمون کو دوبارہ لے لیا گیا ہے، بیچ میں دوسرے مضمون آ گیا تھا جو میں نے اس کا نظم واضح کر دیا تھا. تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، جو وہ خرچ کیا اس کی مثال ہے کہ وہ 700 دانے پیدا کرتے ہیں. کھیتی باڑی میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک بیج بوتے ہیں اور ایک پودے کے اوپر جتنے دانے لگتے ہیں وہ ہمارا ایک بیج کا گویا پیداوار ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہماری نیکیوں کا بھی پیداوار ہوگی. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے بڑھا دیں گے. یہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ وسنزید المحسنین، کہ ہم محسنین کے لیے مزید بڑھا دیں گے. وسنزید للمحسنین، تو محسنین کے لیے ہم مزید اضافہ کر دیں گے اجر میں. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات جو ہے وہ قانونی طور پہ ہے کہ یہ تو اجر ملے گا ہی ملے گا، اس سے اضافہ بھی ہو سکتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت گنجائش والے ہیں، واسع ہیں، یعنی اللہ کے ہاں نعمتیں ختم نہیں ہوتی، انعامات ختم نہیں ہوں گے. اگر جس شکل میں بھی انعام دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ واسع کا مطلب ہے. اور واسع کا دوسرا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ وہ بخیل نہیں ہے، ہاتھ کھلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اپنے بندوں کو خوب کھل کر انعام دے گا. یہ دوسرا پہلو ہے واسع کا. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ بندہ مومن اگر آگے بڑھے گا خدا کے لیے تو اس کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ کسی کو دھتکارے گا نہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کو خود بڑھنا ہے. اور علیم کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے 700 گنا تک کرنے کا وہ بھی، اور جس کے لیے بڑھائیں گے اس کے لیے بھی، وہ اپنے علم کی بنیاد پر کریں گے. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے درجات، عمل کرتے ہوئے کیفیات، جذبات، نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، تو ان سب کا فیصلہ خدا کے حقیقی علم کی بنیاد پر ہوگا. تو یہ قانون اس لیے دیا گیا ہے بڑھانے کا بھی، اور 700 گنا تک کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر دیا ہے. یہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے حالات مختلف ہو سکتے ہیں. وہی نیکی نماز روزانہ کی جو 5 وقت کی ہے، یہ اگر نیند توڑ کر گرم بستر چھوڑ کر پڑی جائے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اگر اطمینان سے آرام سے اٹھیں اور پڑھ لیں تو اس کا اجر نماز جتنا مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن اجر بڑھنے کی جو بات ہے وہ ہمارے اس طرح کے پہلوؤں سے بڑھ سکتی ہے کہ ہم نے کیا مشقت اٹھائی ہے. مثلاً ایک آدمی دور سے چل کے مسجد جاتا ہے، اس کی نماز کا ثواب زیادہ ہو جائے گا کیونکہ اس کا فاصلہ بڑھ گیا ہے. گرمی میں جا کر پڑھ کر دھوپ میں جلتے ہوئے پہنچا ہے، تو یہ ساری چیزیں مشقت ہے، اس کو خطرہ ہے جان کا، لوگ اس کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں پھر وہ پڑھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے حالات کے اعتبار سے اجر میں کمی بیشی کا باعث بن سکتی ہیں. تو اس لیے علیم خدا نے بتایا کہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر رکھا ہے. اب یہ تو اجر کا معاملہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اجر کیا ملے گا، کہاں تک اللہ تعالیٰ لے جائیں گے اس کو، کتنے 100 گنا کر دیں گے، 700 گنا تک اجر اس کا کر دیں گے. آگے فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منم ولا عزا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا ہوتا ہے اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ان کے اوپر کوئی پچھتاوا. اب یہ دو چیزیں ایسی آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی ہیں کہ جو ہمارے انفاق کو ضائع کر سکتی ہیں، یعنی وہ جو 700 گنا تک اجر ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے جیسی یہاں دو بتائی گئی ہیں. ایک یہ کہ احسان جتاتے پھریں جس کے اوپر خرچ کیا، یہ ہمارے ہاں عام عادت ہوتی ہے، میں نے تمہاری وہاں مدد کی وہاں مدد کی اور تم میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہو، تو یہ احسانات جتانے سے آپ کی نیکی ضائع چلی جاتی ہے. جو آپ نے کسی غریب کو، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کی مدد کی ہے کسی موقع پر انفاق کرتے ہوئے، تو اس کو آپ نے احسان جتا دیا تو ضائع ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگ ایسا کرتے تھے कि जंगों में देते थे अगर चंदा कोई, तो बड़े बड़े आकर एहसान चढ़ाते थे जो मुनाफिकीन थे ख़ास तौर से, कि हमने आपकी उस वक्त मदद की, उस वक्त ये कर दिया, उस वक्त ये कर दिया। तो उस माहौल में जो जिहाद के हवाले से बात हो रही थी, उस माहौल में भी एहसान जताने से नेकी ज़ाया चली जाएगी, और इस मामले में भी जो हमारी ज़िंदगियों में आम रूटीन की बातें हैं कि हम जिसकी मदद करते हैं फिर उससे तवक्को रखते हैं और उसको फिर ताने देते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया था, तुमने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने फ़लां वक्त तुम्हारी मदद की थी, तुम देखो मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो ये जो एहसानात जताना है ये हमारी नेकी को ज़ाया कर देते हैं, वला अज़न और ना अज़ियत देते हैं। अज़ियत देने का जिस तरह एहसान जताना है इसी तरह से अज़ियत देना है, लेकिन अज़ियत देना ज़रा वसी चीज़ है। मिसाल के तौर पर हमने उसको जलील करना शुरू कर दिया लोगों के सामने, कि ये तो मेरे से लेके जीता है, ये तो निकम्मा आदमी है, कमाता ही नहीं है, कोई इस तरह की बात है। इसी तरह आपने काम करवाना शुरू कर दिया, जिसको पैसे दे रहे हैं मदद करने के लिए उससे सारे घर की सफाई करा ली, मजदूरी करा ली, मुशक्क़त करा ली, ये चीज़ें नेकी को ज़ाया कर देंगी। इसी तरह आपने को ऐसे जुमले कसने शुरू कर दिए कि जो एहसान तो जताने वाले नहीं थे लेकिन अज़ियत देने वाले थे, बड़ी मजलिस में रुसवा करके रख दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी उसमें आ जाएंगी। तो काम करवा लेना, मुशक्क़त में डाल देना, लोगों के सामने जलील करना, तानेबाजी कर देना, इस तरह की चीज़ें ये अज़न में आ जाएंगी, तो इससे भी नेकी ज़ाया चली जाती है। ये तमाम नेकियों के बारे में ऐसा ही है, लेकिन चूंकि दूसरों के साथ हम जब नेकी करते हैं तो आम तौर से मदद करना पैसे के लिहाज से हो जाता है, तो उसमें अगर हम एहसान इस तरह से मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती बल्कि कोई काम कर दिया, कोई साथ दे दिया, तो उसमें भी नेकी अगर आपने की है तो इस तरह से ज़ाया हो जाएगी अगर ये दो काम हम कर देंगे। अगर ये दो काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा अजर खुदा के पास महफूज है, और अगर हम ये दोनों काम कर देते हैं दो या दो में से एक, तो हमारी नेकियां ज़ाया चली जाएंगी। तो गोया यूँ समझ लीजिए कि ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की आफात में से है दो चीज़ें। इन्फाक करने वाले अक्सर इसका शिकार हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हमारा नेकी हमने कर रखी है वो ज़ाया नहीं जाएगी, लेकिन ज़ाया चली जाती है। इसलिए अपने अपने रवैयों में, अपने कामों में इस बहुत बहुत तवज्जो के साथ कंट्रोल रखना चाहिए कि मैंने जो इन्फाक किया है वो ना एहसान की शक्ल इख्तियार करे ना वो अज़ियत का बायस बने दूसरे के लिए। बाज़ुकात लोग देते इस तरह से हैं कि वो अज़ियत बन जाती हैं, यानी देते हुए वो लहजा, स्टाइल या जलील करने के अतबार से या कुछ बेइज्जत करने के अतबार से हो जाएगा, तो वो जुमले ऐसे बोल दिए देते हुए, या दिए देने का अंदाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जो जलील कर देने वाली थी, ये सारी चीज़ें उस नेकी को ज़ाया कर देंगे। उसके साथ कुछ जुमले जोड़ दिए, तुम तो हर रोज़ ही मांगने आ जाते हो, तुम्हारा तो काम ही यही है, तो वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं नेकी जो है। तो ये मैंने मिसालों से इसलिए वादे किए ताकि दोनों का मफहूम वाज़े हो जाए कि एहसान नहीं जताना चाहिए अल्लाह की राह में जब किसी की मदद की है, और ना अज़ियत देनी चाहिए तानों से, तबसरों से, बॉडी लैंग्वेज से, काम करवा के, मशक्क़त करवा के। मसलन घर में जो काम करने वाले हैं अगर हम उनकी मदद करते हैं इजाफी तौर पर, तो फिर उसके बदले में काम नहीं करवाना चाहिए या उनको डांटना नहीं चाहिए कि मैंने ये कर दिया था तुम्हारे साथ, तो मेरे साथ क्या कर रहा है। तो ये दो दो चीज़ें इन्फाक को या हमारे जिस्मानी तावन को जो हम दूसरों के साथ मेहनत करके किसी काम में हिस्सा डाल दिया, तो वो भी असल में मजदूरी मिलनी चाहिए तो वो भी माली तावन ही हो जाता है, उसके ऊपर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वला खौफुन अलैहिम वला हुम याहज़नून, ये बहुत अहम जुमला है इसके एतबार से कि जिन्होंने पैसा खर्च करके दूसरों को खौफ में मुबतला नहीं किया और दूसरों को पछतावे में मुबतला नहीं किया, क़यामत वाले दिन वो इन दोनों चीज़ों से महफूज रहेंगे। तो गोया मन्नन में या जनून और अज़ियत में खौफ दोनों मानी डाल दिए। बाद जो वडेरे किस्म के लोग होते हैं, जागीरदार किस्म के, वो जो किसी की मदद करते हैं गरीबों की, अपने गांव के लोगों की, उनके लिए वो अज़ियत का बायस बन जाते हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर वो यानी कर्ज़ दे दिया है, अब कर्ज़ वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और तकलीफ़ का बायस बन गए पूरे गांव के लिए, वो डरते मारे छुपते छुपाते फिर रहे हैं, कोई इंतज़ाम भी नहीं हो रहा, इस तरह के पीछे भी होती हैं चीज़ें। तो फरमाया कि किसी के लिए खौफ नहीं होगा जो इस तरह से किसी के साथ इन्फाक करेगा। जितनी भी नेकियां हैं उनमें ये दो चीज़ें ज़रूरी नहीं कि काम आए, उनमें एक तीसरी चीज़ काम आती है जो आगे ज़ेर बहस आ जाएगी, वो रियाकारी है। तो किसी भी नेकी को ज़ाया करने के लिए रियाकारी है। रियाकारी की एक झलक एहसान जताने में नज़र आती है, यानी जब हम एहसान जताते हैं तो एक रियाकारी कर देते हैं उस आदमी के सामने जिसको हमने मदद की होती है, ख़र्चा किया होता है जिसके ऊपर, तो वो आगे ज़ेर बहस आ जाएगा। लेकिन यहाँ चूँकि इन्फाक सिर्फ ज़ेर बहस है, तो इन्फाक के एतबार से ये दो चीज़ें हमारी आम अमली ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन रियाकारी भी उसके साथ शामिल होती है, वो आगे आ जाएगी। तब अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दो चीज़ें जो हैं ये तुम्हारे इन्फाक के अजर को ज़ाया कर देंगी। तो अगर ये तुम दो काम ना करो तो ठीक है, लेकिन अगर ये दो काम तुमने करने हैं तो फिर बेहतर है कि अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तो फरमाया कि कौलुन मारूफुन व मगफरतुन खैरुन मिन सदकतिन यतबाउहा अज़न, कि भली बात करना और किसी को बख्श देना ये इस बात से बेहतर है कि तुम सदका दो, खैरात करो और फिर उसके बाद उसको अजियत दो। वही एहसान जताने वाली दोनों बातें इकट्ठी हैं, एक का जिक्र कर दिया, दूसरी खुद ब खुद पेश नज़र है। तो फरमाया कि किसी को अच्छे तरीके से टाल देना बेहतर है, और अगर वो बार बार आपसे मांग रहा है, असल में पीछे दो चीज़ें थी, मन्नन जो है वो कौले मारूफ उसके लिहाज से आ गया है, और अजियत देने से मगफरत पेश नज़र है। कि बाज़ुकात हमें कोई ऐसे लोग मांगने वाले होते हैं हमसे तावन के, हर रोज़ आए हुए हैं, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, तो फरमाया कि इसके ऊपर उनको माफ़ कर देना बेहतर है। और हमारे यहाँ जुमला गालबन इसी आयत की वजह से मरूफ है कि माफ़ कीजिए जी, ठीक है। तो ये मगफरत मांग लेना या उनको बख्श देना ये ज़्यादा बेहतर है इसके मुकाबले में कि हम पैसे भी दें और बाद में अजियत देते फिर उनको, बाद में ताने देते फिरें, बाद में एहसान जताते फिरें। तो भले तरीके की बात, भली बात कर देना और माफ़ कर देना जब उनका रवैया जिच करने वाला हो, तंग करने वाला हो, तो माफ़ कर देना बेहतर है उस सदक़े से जिसके बाद अज़ियत दी जाए। तो कौलुन मारूफुन व मगफ़िरतुन, ये दो अहम बातें तमाम ज़िंदगी में ये असूल अपने सामने रखना चाहिए, तमाम ज़िंदगी में। अगरचे यहाँ सियाक़ व सबाक़ में इन्फ़ाक़ की बात है, लेकिन ये दो बातें जो हैं ये हमारे बहुत सारे मामला को आसान कर देती हैं ज़िंदगी में, लोगों के साथ लेन देन, उठना बैठना, मिलना जुलना, किसी फंक्शन में शरीक होना, शादी में शरीक होना, मर्ग में शरीक होना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसमें हमें शिकायतें भी पैदा होती हैं, और शिकायतें पैदा होती हैं तो हम उसके ऊपर बहस करते हैं, लड़ते हैं, झगड़े करते हैं। इन झगड़ों में जो बेहतरीन आदमी होगा वो क्या करेगा, वो ये दो रास्ते अपना लेगा। कुरान ने इसको दूसरे लफ्ज़ों पर भी बयान किया, इसलिए मैं इसको यहाँ जनरलाइज कर रहा हूँ, कि भली बात कह देना और माफ़ कर देना। ये बड़े ज़र्फ़ की बात है, बड़े हौसले की बात है, लेकिन खुदा के बंदे हौसले वाले ज़र्फ़ वाले होते हैं। कोई आपका कितना ही नुकसान क्यों ना कर दे, वो आर्जी है, हमेशा याद रखिए। करोड़ों का नुकसान भी आर्जी है, लाखों का नुकसान भी आर्जी है। अगर आप जायज़ तरीके से अपना नुकसान पूरा करा सकें उससे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करा सकते तो अल्लाह पे छोड़ दें, उनको माफ़ कर दें। माफ़ करने के दो पहलू होते हैं, कि आपने कहा कि मैं दुनिया में माफ़ कर देता हूँ, आखिरत में माफ़ नहीं करूँगा, तो ये एक ख़तरनाक रास्ता है, क्योंकि खुद हमारी करतूत क्या हैं कल क़यामत वाले दिन पता चलेंगे। तो हमारा इस नीयत से माफ़ कर देना कि या अल्लाह मुझसे जो कोताहियाँ हो गई हुई उनके बदले में मैं इनको माफ़ कर रहा हूँ, ताकि कल क़यामत वाले दिन मेरा भी मामला आसान हो जाए, तो उनको माफ़ कर दें इस नीयत से कि इस नुकसान के बदले जो मुझे मेरे भाई ने या मेरे दोस्त ने पहुँचाया है, इस नुकसान के बदले मैं आखिरत में अजर लेना चाहता हूँ, आप इसको माफ़ कर दीजिए। ये आसान नहीं होता, इसमें कोई शुबा नहीं है, ख़ास तौर से जब अना को ठेस पहुंची हो या पैसा कोई माली नुकसान हो गया हो तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है माफ़ करना। लेकिन जो बड़े बंदे होते हैं खुदा के, हौसले वाले, ज़र्फ़ वाले, असल में खुदा के साथ ताल्लुक़ एक समझिए कि एक आम आदमी, आम लेवल के लोग होते हैं। आम लेवल के लोग का मतलब है कि वो पैसे पे मर रहे हैं, दौलत पे मर रहे हैं, लोगों अपनी अना की खातिर लोगों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर खाना खुल गया तो देखे कि भाग के जा रहे हैं खाने के लिए, जैसे कि पता नहीं, ये आम आदमी का काम है। जैसे ही आदमी साहिब ईमान होता है तो आम आदमी से उठकर ज़रा बुलंद जगह पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी है उसकी निगाह दुनिया पर होती है, इसकी लज्जतों पर, इसके फ़ायदों पर, इसके नुकसानात पर, इसकी जो भी जाहो जलाल है, इज़्ज़त एहतराम है, इस पर निगाह होती है उसकी। लेकिन जैसे ही साहिब ईमान होता है तो उसकी निगाह ऊपर उठ के आखिरत में चली जाती है। तो वो इन दुनिया की मुसीबतों को अपने लिए अजर का बायस समझने लग जाता है। उसके ख्याल में अब ये आखिरत की तरफ जाने का एक सामान है जो मेरे लिए मुयस्सर हो रहा है। तो इस वजह से उसकी जो ज़हनी बुलंदी है वो पैदा हो जाती है। तो एक होता है खुदगर्ज़ आदमी, हरीस आदमी, आखिरत वाला आदमी और तरह का आदमी बन जाता है। अलामा इकबाल ने बयान किया ना कि मैं वो सौदागर हूँ कि जिसने नफ़ा देखा है खसारे में, कि घाटा पा के फ़ायदा महसूस हो रहा होता है। तो बंदा मोमिन खुदा की खातर इस तरह का इंसान बन जाता है। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी में दो चीज़ें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दोनों ये काम कर रहे होते हैं लेकिन खुद तकलीफ़ में रहते हैं। ये जो लोग होते हैं ये पहले दो तो काम कर देते हैं, उन्होंने कभी किसी के साथ बुरी बात नहीं करेंगे और माफ़ भी कर देंगे, कभी बदला नहीं लेंगे, कभी कुछ नहीं, लेकिन अपने अंदर उस गम को पाले रखते हैं। वो काम नहीं करना चाहिए, उसको आखिरत पे छोड़ देना चाहिए। खुदा का सबसे बड़ा आसरा ही यही है कि बल्कि आखिरत का भी कह लीजिए कि अल्लाह और आखिरत का सबसे बड़ा आसरा यही है कि मुझे पता है कि कल इसका बदला मिल जाना है और जो यहाँ मुझे दुख पहुँचा है या नुकसान पहुँचा है ये कल ज़ाहिल हो जाएगा। इस तसल्ली की वजह से आदमी मुतमिन हो जाना चाहिए, और अगर वो मुतमिन नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसने कम अज़ कम इस चीज़ को खुदा के साथ नहीं जोड़ा। बाकी चीज़ों में जोड़ लिया उसने लेकिन इस बात को जोड़ नहीं पा रहा कि खुदा के हवाले करके मुतमिन हो जाए। क्योंकि खुदा के हवाले करने का मतलब है कि हमने ऐसी जगह रख दी बात जहाँ कोई भूलेगा नहीं, ज़ाया नहीं होगी, उसका लाजमी कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह के हवाले की बात फिर उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये नहीं हो सकता। तो आप माफ़ कर दें उस बंदे को और खुदा के हवाले कर दें, क़यामत को फिर देखिए आपके साथ इंशाल्लाह क्या अच्छा मामला होता है। तो ये दो काम ज़ाहिर तौर पर भी कर रहे हैं और अंदर से वो बात भी करनी है कि खुदा के हवाले कर दिया, फिर ही असल में फ़ायदेमंद बात हुई, वरना आपके अमल से बार बार फिर वो काम होता रहेगा जिसको अल्लाह ताला अज़ियत कह रहे हैं कि बाद में अज़ियत देना। तो कौलुन मारूफुन व मगफिरतुन खैरुन मिन सदकतिन यत्बाउहा अज़न। तो ऐसी सदक़े से जिसके बाद तकलीफ़ देनी है आपने, एहसानात जताने हैं, उससे बेहतर है कि आप भली बात कर दें मांगने वाले को कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, भाई मैं नहीं दे सकता, इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, पैसे हैं तो तब कहिए कि हैं लेकिन मैं देना नहीं चाहता या दे नहीं सकता वगैरह वगैरह। तो आप भले तरीके से बात कर दें, उसको समझा दें अपनी पोजीशन, अपनी सूरत हाल समझा दें, और अगर वो कोई ऐसी बात करता है जिसमें आपकी दिल आज़ारी का बायस है या इसरार कर रहा है या पीछे ही पड़ गया है तो इस चीज़ को माफ़ कर देना चाहिए। वल्लाहु गनीयुन हलीम। अल्लाह ताला गनी है और हलीम है। देखिए जो मैं शुरू से अर्ज़ करता चला रहा हूँ, पहले तो इसका समझ लीजिए कि पिछली बात से क्या ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला गनी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे जो मामलात हैं इस तरह के उसमें खुदा को कोई एहतियाज नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों का देखभाल करने वाला है, वो कर लेगा, लेकिन चूंकि उसने दुनिया का निज़ाम ये बनाया है कि कुछ को ज़्यादा दिया है कुछ को कम, ताकि वो एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के साथ ताबुन करें, तो इम्तिहान की गरज से अल्लाह ताला कह रहे हैं, वैसे वो गनी है, तुम नहीं दोगे तो कोई और रास्ता वो अपने बंदों के लिए निकाल लेगा। अलबत्ता हलीम का जो ताल्लुक़ है यहाँ वो ये कि तुम जो अज़ियतें दे रहे हो लोगों को, देते हो उनके ऊपर ख़र्चा करके या उनको पैसे मदद करके, तो अगर अल्लाह ताला हलीम ना होते तो फौरन सज़ा देते और तुमसे ये चीज़ें छीन भी सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हिल्म की वजह से तुम्हारी ये चीज़ें नहीं छीनी हैं। तो तुम एक ऐसे खुदा से वास्ता है कि जो बुर्दबार है, हौसले वाला है, तो इस वजह से वो माफ़ कर देता है, हर बात पर फौरन नहीं पकड़ता। वरना अल्लाह ताला ने बताया कि अगर अल्लाह ताला बंदों को फौरन गुनाहों में पकड़ने लगे तो कोई बचे ही नहीं। तो इसलिए ये जो बात है ये अल्लाह ताला के हलीम होने की वजह से वो अपने इस असूल पर कायम रहता है कि फौरन सजा ना दे, वरना बाज़ुकात हम किसी को इतना जलील कर देते हैं कि अरश चाह रहा होता है कि कोई अजाब भेज दे उसके ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी एक स्कीम बनाई हुई है, उसके तहत फिर वो चीज़ों को बुर्दबारी से देखते रहते हैं। गनी और हलीम, और पीछे जो बात चली थी वासियुन अलीम, ये दो सिफात मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ कि जब भी दो सिफात आएंगी तो वो असल में एक मुकम्मल सिफत है जिसके दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू जिस तरह से होते हैं, उस तरह से गनी और हलीम ये दो सिफतें हैं लेकिन मिलकर एक सिफत बनाते हैं, ऐसे ही वासियुन अलीम ये भी दोनों सिफात मिलकर एक सिफत बनाते हैं। अब इस पहलू से दोनों सिफात को देख लेते हैं। वासे और अलीम, मिसाल के तौर पर मैं साहिब वसत हूँ, बड़ा मेरे पास ज़मीनें हैं लेकिन मुझे अपनी ज़मीनों का पता ही नहीं, तो वसी कैसे रहूँगा, महदूद हो जाऊँगा। तो वसत के लिए कि मेरे पास क्या क्या सलाहियतें हैं, क्या क्या कुव्वतें हैं, कितनी ज़मीनें हैं, कितने इनामात हैं, मैं क्या क्या तख्लीक कर सकता हूँ, क्या क्या बना सकता हूँ, इस सब का इल्म होगा तो वासे होंगे। तो अब नौज़ बिल्ला मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला को अपनी एक कुदरत का पता ही नहीं है, तो वसत कम हो गई। तो वासे होना और अलीम होना दोनों जुड़ी हुई बातें हैं। तो अल्लाह ताला को अपनी सारी सलाहियतों का लफ्ज़ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कुदरत का लफ्ज़ सही लफ्ज़ है, तमाम कुदरतों का अल्लाह ताला को इल्म है, और अपने ज़मीन व आसमान में जो कुछ उसने तख्लीक किया है, सातों ज़मीनों आसमानों में, वो सबसे अल्लाह ताला वाकिफ़ है। इसी की वजह से वो हो सकता है कि मुझे और आपको उठाकर कोई ऐसी जन्नत दे दें कि हम सारे ही गम भूल जाएं दुनिया में उठाए थे, ठीक है। तो इसलिए वासियुन अलीम दोनों मिलकर एक बात बनती है। हमारे ज़माने में एक जुमला बोला जाता है कि इल्म ताकत है, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि मिसाल के तौर पर अगर गन पाउडर जब बना था बारूद, तो गन पाउडर की ताकत जिनको नहीं पता थी उनके पास वो ताकत नहीं थी, जिनको पता थी उनके पास वो ताकत थी। मैं एक काम करने का इल्म रखता हूँ, मेरे पास एक ताकत है, वो आपके पास नहीं है। आप एक इल्म रखते हैं एक चीज़ का, वो आपके पास ताकत है, मेरे पास नहीं है। तो इसलिए वासियुन अलीम में अगर इल्म को बमाना ताकत लिया जाए, और वासे के माने में कि अल्लाह ताला को उन चीज़ों का इल्म है कि चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या कर सकती हैं, तो तब भी वासे और अलीम का आपस में ताल्लुक जुड़ता है। तो गोया खुदा की कुव्वतें, खुदा का इल्म, दोनों एक ही चीज़। गनी उन हलीम जो है वो खुदा बेनियाज हैं। गनी दरअसल दौलतमंद को कहते हैं, और दौलतमंद जो है फिर वो उसको दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं होती कि मतलब मेरे पास पैसा है तो मैं आपके पास मांगने क्यों जाऊँगा, मुझे आपके ताउन की ज़रूरत नहीं है। तो जब अल्लाह ताला गनी है, सब कुछ उसका है, सब कुछ वो बना सकता है, कोई उसके यहाँ कमी नहीं है, तो फिर उसको वो जज्बात भी नहीं होते जो मेरे और आपके हो जाते हैं। यानी मैं जो कि मोहताज हूँ, जब आप नाराज़ होंगे, मैं आपका मोहताज हूँ, आप नाराज़ हुए तो मेरे लिए तकलीफ़ का बाइस बनेगा। तो जब जब कोई ज़ात गनी है तो वो हलीम भी होगी, उसको आपके नाराज़ होने से, राज़ी होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बुर्दबारी हो जाएगी। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू यह है कि अल्लाह ताला जो अपने बंदों को राज़ी करने की कुव्वत रखते हैं कि जिसको चाहें दे दें, जिसको चाहें छीन लें, ये भी खुदा के गनी होने की वजह से हैं, और इस मानी में हलीम हैं कि अल्लाह ताला फिरौन को भी देते रहते हैं जब तक उसकी मौत का फ़ैसला नहीं कर लेते, देते रहते हैं। हज़रत मूसा एक असा लिए बार बार उसके दरबार में हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको ही बुलाते हैं कि आप चले जाएं, खुद भेजा भी उनको कि आप फिरौन के पास जाएं, लेकिन फिरौन तख्त पर बैठा होता था। ठीक, तो अब ये किस वजह से हो रहा है कि उसको इतनी बादशाह दे रखी है, उसको इतनी दौलत दे रखी है, हज़रत मूसा एक ग़ुलाम कौम के सरदार हैं, नबी हैं, और बार बार खुदा के पैगंबर हैं, और बार बार फिरौन के दरबार में जा रहे हैं। तो अब ये इसके अंदर खुदा के गनी होना और खुदा का हलीम होना दोनों की वजह से ऐसा था कि अल्लाह ताला फिरौन को मोहलत दे रहे थे, और मोहलत देने का जो अमल है वो गनी और हलीम होने की वजह से। अगर अल्लाह ताला गनी ना हो, वो मोहताज हो, नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, तो वो हलीम भी नहीं रहते। तो इसलिए ये दोनों सिफतें भी मिलकर एक सिफत मुकम्मल करती हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है, गनी है, वो किसी का मोहताज नहीं है, और वो हलीम है, बुर्दबार है। तो ये खुदा की बहुत बुलंद सिफात में से है कि खुदा की ज़ात इतनी तवंगर है, इतनी साहिब दौलत है कि जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे रोक ले, और वो हलीम है, सज़ा नहीं देता, फौरन फ़ैसले नहीं करता, बल्कि मामलात को टालते रहते हैं, मोहलत के ज़ाब्ते पर, तौफीक के ज़ाब्ते पर वो चीज़ों को देखते रहते हैं। तो ये अल्लाह की ज़ात है जिसका ज़ाहिर है कि बाज़ क्या तमाम सिफात जो हैं अल्लाह ताला की, उसका हम पूरा इहाता कर नहीं सकते, क्योंकि हम इंसानों को हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा सा एक इल्म दिया गया है। मसलन गनी, हम इंसानों ही को गनी देखकर कुछ बात समझा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम कि खुदा का जो गनी होना है वो बयान कर सकें। छोटी मोटी बात तो मैंने कर दी कुरान की रोशनी में कि उसको कोई मोहताजी नहीं है, सब कुछ बना सकते हैं, ज़मीन व आसमान के मालिक हैं। उसके गनी होने का मतलब ये है, और हलीम होने का मतलब भी हम इंसानी लेवल पे समझा सकते हैं। खुद खुदा के यहाँ मिसाल के तौर पर क्या गज़ब कभी भी अंदर पैदा नहीं होता, मैं आप कुछ नहीं बता सकते कि अल्लाह ताला को गुस्सा आता हो, आता है कि नहीं आता, मुझे नहीं मालूम, कह ही नहीं सकते। कुरान मजीद में बयान आता है कि अल्लाह ताला का गज़ब लेकर लौटे, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हुआ, ये बयानात मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पे हम कुछ बात कह सकते हैं, लेकिन क्या खुदा की ज़ात में गुस्से से वैसी तकलीफ़ होती है जैसी हमें होती है? हरगिज़ है कि ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से ये सिफात का जो आखिरी पहलू है खुदा की ज़ात के हवाले से, वो हम बयान नहीं कर सकते, सिर्फ अपने लिहाज से थोड़ा बहुत बयान कर सकते हैं। आगे पूरी बात मुकम्मल कर दी, क्योंकि वहाँ जो मन्नन और अज़ा का बात थी वो उस माहौल में बात थी जिसमें बात हो रही थी। आगे फरमाया, या अय्युल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुब्तिलू सदकातिकुम, अपने सदका व खैरात को ज़ाया न कर दिया करो, बिल मन्नी वल अज़ा, एहसान जता कर और अज़ियत देकर, कल्लज़ी युन्फिकु मालहु रियान्नास, उस आदमी की तरह अपने अमाल अपने नेकी सदक़े की ज़ाया न कर दिया करो जो अपने माल को खर्च करता है लोगों को दिखावे के लिए, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो अल्लाह और आखिरत को ईमान नहीं रखता, उसकी तरह तुम अपने सदकात को ज़ाया ना करो। अब यहाँ तीन बातें और आ गईं जो नेकी को ज़ाया करने का बायस बनती हैं। एक है रियाकारी। अच्छा, पहले एक सदक़े का लफ्ज़ आ गया है, दो दफ़ा आ गया है, तो सदक़े के हमारे यहाँ तसव्वुर जो है उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। सदका और खैरात और ज़कात हकीकत में खैरात है, अल्लाह की राह में खर्च करना है। सदका और खैरात ये नफली भी हो सकते हैं, फ़र्ज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की राह में खर्च करना है। तो सदक़े का मतलब भी अल्लाह की राह में खर्च करना है, खैरात का मतलब जो उर्दू का लफ्ज़ है उसका मतलब भी अल्लाह की राह में खर्च करना है। ज़कात अलबत्ता फ़र्ज़ है, इसलिए उसको अलग बयान किया जाता है। तो सदका और खैरात दोनों एक चीज़ है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में सदका जो तसव्वुर बन गया कि बीमारी टालने के लिए, मुसीबत टालने के लिए किया जाता है, ये हिंदुस्तानी तसव्वुर है, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं। मैं पहले भी कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ। तो सदका दरअसल अल्लाह की राह में खर्च करना है। सदके का लफ्ज़ हक महर के लिए भी आया है, सदके का लफ्ज़ ज़कात के लिए भी आया है, सदके का लफ्ज़ उस माल के लिए भी आया जो बैतुल माल में जमा किया जाता था, ज़कात और माल गनीमत वगैरह की सूरत में। तो ये सारा कुछ जो है ये सदका ही है, अल्लाह की राह में जो भी हम देते दिलाते हैं वो सदका है। तो अल्लाह की राह में खर्च करना सादा मफहूम है। तो फरमाया कि अपने सदकात यानी अल्लाह की राह में जो तुम खर्च करते हो उसको ज़ाया ना कर बैठो, एहसान जताकर और अजियत देकर, उस आदमी की तरह जो रियाकारी के लिए खर्च करता है। दिखावे के लिए खर्च करना जो है ये ज़ाहिर है कि एक लिहाज से हमारी नीयत को ख़राब कर देता। तो नीयत जो है वो आगे अल्लाह ताला दो नीयतें जो हैं वो जायज़ करार दे रहे हैं, बाकी नीयतों को नाजायज़ करार दे रहे हैं। तो हर माल, हर नेकी करते हुए माल खर्च करने की हो, सदका देने की हो, तो उसमें नीयत होगी अल्लाह को राज़ी करना। रियाकारी नीयत नहीं होनी चाहिए कि लोग मुझे सखी कहें, या मैं इसलिए खर्च करूँ कि लोग देखें क्या बात है जी बड़ा नेक आदमी है, या इसलिए खर्च करूँ कि कल इससे काम लूँगा, ये रियाकारी है सारी की सारी। तो एक चीज़ ये हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो ला युमिनु बिल्लाह, वो अल्लाह को नहीं मानता, वल यौमिल आखर और आखरत को नहीं मानता। तो ये दो अलग अलग ली जा सकती हैं और दो इकट्ठी भी की जा सकती हैं। अगर कोई आदमी अल्लाह को ना माने और आखरत को ना माने तो उसकी नेकी की नीयत क्या होगी? दुनियावी, क्योंकि ना अल्लाह को मानता है ना आखरत को मानता है। तो आदमी की नीयत अगर सही होगी तो यही ना कि मैंने कल अल्लाह को जवाब देना है, क़यामत वाले दिन बच जाऊँ मैं, तो नेकी इसलिए करेगा। अगर वो अल्लाह को नहीं मानता, आखरत को नहीं मानता, तो रियाकारी के अलावा करेगा क्या? ठीक है, तो ये दो रिया नास और ला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर दोनों एक ही बात के दो पहलू हैं। लेकिन अब इसको उलट कर देखिए कि जो आदमी अल्लाह को मानता है और आखरत को मानता है और रियाकारी कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस नेकी के बारे में वो असल में ईमान से महरूम है। जो वो नेकी कर रहा है इस वक्त, बाकी चीज़ों में नमाज़ पढ़ रहा था तो अल्लाह के लिए पढ़ रहा था, रोज़ा रख रहा तो अल्लाह के, लेकिन सदका कर रहा है रियाकारी के लिए, या नमाज़ पढ़ रहा है रियाकारी के लिए, बाकी काम वो अल्लाह के लिए भी करता है। तो इस मौके पर दरअसल वो इस ईमानी कैफियत से महरूम है कि वो अल्लाह को मानता है और आखरत को मानता है, वगरना वो रियाकारी ना करता। ठीक है, अब सारी बात को पीछे ले जाइए कि नेकी कर रहा हूँ मैं, अल्लाह की राह में हुकूमत को दे रहा हूँ, या लोगों को, गरीबों को दे रहा हूँ, रिश्तेदारों को दे रहा हूँ, तो उनको मैंने दिखावे के लिए नहीं देना, रियाकारी के लिए नहीं देना, और देना है तो अल्लाह और आखिरत पर ईमान की नीयत से देना कि मेरा कल वास्ता खुदा से पढ़ना है क़यामत वाले दिन, तो मैं नेकी उस मकसद के लिए करूँ। तो गोया नेकी के मौके पर ईमान दरअसल नीयत का किरदार भी अदा कर रहा होता है। इस वजह से अल्लाह ताला ये बार बार कहते हैं कि जिसका ईमान नहीं उसकी नेकी कबूल नहीं होगी, बार बार कहते हैं। तो ईमान नहीं है तो नेकी कबूल नहीं होगी, तो मतलब क्या हुआ कि उसकी नीयत ही ठीक नहीं थी, वो तो दुनिया का ही काम कर रहा था। तो इसलिए वो लोग जो नेकी कर रहे होते हैं दुनिया में और अल्लाह और आखिरत को नहीं मानते, तो वो दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, खा उनका जज्बा फितरत लोगों की खिदमत की तरफ चला जाए या रियाकारी की तरफ चला जाए। तो लोगों की खिदमत, फिर लोगों की खिदमत रह जाएगी, वो ऐसा नहीं होगा कि वो अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। तो मैं इसको एक समझाने के लिए मिसाल दिया करता हूँ कि बैंक में मेरा अकाउंट है और आपने मुझे कर्ज अदा करना है, तो आप मेरे अकाउंट में जमा कराएंगे तो कर्ज अदा होगा, किसी और के अकाउंट में जमा करा देंगे तो मेरा कर्ज अदा नहीं होगा। इसी तरह से खुदा का एक अकाउंट खोल रखा है कि जो आखिरत के लिए काम करेगा उसके अकाउंट में पैसे जमा होते रहेंगे, और जो दुनिया के अकाउंट के लिए करेगा तो उस आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलना। तो आखिरत का अकाउंट उसी का खुल सकता है जो आखिरत को मानता है, वरना वो खोलेगा नहीं। तो इसलिए ईमान, अल्लाह और आखिरत पर ईमान वो बुनियादी वस्फ है कि अगर आपके पास है तो नेकियां आपके काम आ जाएंगी, जो सही नीयत के साथ की होंगी, रियाकारी के साथ या एहसान जताने के लिए या अजियत देने के लिए नहीं की होंगी, वो आपके काम आ जाएंगी, वरना ज़ाया चली जाएंगी। तो अब फरमाया आगे कि फमसलहु कमसल सफवान अलैहि तुराबुन फआसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दा। तो ऐसे लोगों की मिसाल जो ईमान के बगैर और रियाकारी के साथ नेकी करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि एक बड़ी चट्टी सी चट्टान हो, उसके ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई हो, और फिर एक बारिश आ जाए तो चट्टान बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। ठीक है, उस पर कोई पौधा नहीं उगेगा, बारिश जाया चली जाएगी। तो बारिश एक नेकी है, एक रहमत है। ये रहमत अगर ईमान के बगैर आई तो समझो कि एक चटियल चट्टान के ऊपर, हमवार चट्टान के ऊपर पड़ी, ना उसमें कहीं पानी ठहरा, ना उस मिट्टी में कोई पौधा होगा, वो खाली चट्टान रह जाएगी। तो जिसके पास ईमान नहीं है और जिसके पास रियाकारी है, उसकी हालत ये है। तो बारिश जैसी तो नेकी एक रहमत है, ये आपके पास स्टोर होनी चाहिए, उसको कोई फल बूटे नगले निकलने चाहिए। लेकिन अगर वो आपके पास ईमान नहीं है तो तब भी बहकर चली जाएगी, और अगर आप रियाकारी से कर रहे हैं तब भी बहकर चली जाएगी। अब आपके उस बर्तन में ना पानी ठहरेगा, ना उसकी मिट्टी में कोई बीज उगेंगे। ला यकदिरूना अला शयइन। तो अब उस चट्टान को देखिए जिस पर बारिश पड़ रही, थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई थी, सारी बह गई। ना आप मिट्टी को रोक सकते हैं, ना आप पानी को रोक सकते हैं। ला यकदिरूना अला शयइन, कोई कुदरत नहीं रखते तुम ऐसी चट्टान के ऊपर कोई रोक लो। रोकने के लिए फिर कुछ काम करना पड़ेगा, वो क्या है? ईमान बिल्ला और रियाकारी छोड़ना। तो आपकी आपके प्याले में वही नेकी ठहरेगी, वही बारिश ठहरेगी, जिसके लिए आपने कोई सरबंद कर रखा होगा कि वो रुक जाए। और सरबंद करने का मतलब क्या है? कि आप रियाकारी छोड़ दें, दुनियावी मकासद छोड़ दें, और अल्लाह और आखरत पर ईमान की वजह से नेकी करें, तो फिर वो आपके बर्तन में आपकी चट्टान पर रुक जाएगी। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला ऐसे काफिरों की कोई हदायत नहीं देता, उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं करता। वो जितने भी नेकियां कर लें, वो सब चट्टान पर होने वाली बारिश की तरह बह जाएगी। उसका कोई फल नहीं निकलेगा, कोई पौधा नहीं उगेगा, किसी बीज में किसी पौधे में रोइदगी नहीं आएगी, वो खाली की खाली चट्टान पड़ी रह जाएगी। आगे उनकी मिसाल आ रही है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं सही नीयत के साथ, वो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा पढ़ेंगे। वक्त हो गया है। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।